پہلے کوئی دن پہلے جھولن شاون کا جھولا مہینہ ہے, اس میں برندابن یہاں رادھا اور کرشن ہی ڈولے میں جھولے, اس میں برسانے میں رادھا کنڈ میں برندابن میں ہندیر بن میں جھولے لگے, مہینے بھر جھولے, وشیش کر کے پانچ دن اور پنچم دن پورنیما کے دن بلدیو پربھو جی کا آبرواؤ ہوا, سارا پرج آنند میں ڈوب گیا. ابھی اسی کا مہوتسو چل رہا تھا تب تک کرشن نے متھرا میں آبربھوت ہو کر اور گوکل میں جنم لے کر کے دیوی پرکار کی لیلائیں کی. ان کا اتسو ابھی سماپت نہیں ہوا تھا, اتنے میں سمتی رادھکا جی کہاں راول میں آبربھوت ہوئی وشبھان مہاراج کے گھر میں, اور ان کا بھی کل ان کا آبربھاو مہوتسو اتیادی ہوا. کچھ دن ایک ڈیڑھ مہینے کچھ بھی شام رہے گا, ایک مہینے کرے ایک مہینے آٹھ نو دن, اس کے بعد ہی میں کارتک کا مہینہ آ جائے گا. کارتک کا مہینہ آئے گا اور پھر ٹھیک ہے ہمارا کلیان. تو ایک مہینہ یہ رادھا جی کی اپاسنا میں جائے گا, اس میں ہم لوگ ان کے وشیش وشیش لیلا استھلوں کا درشن کریں گے اور نیمت پوروک ان کا سادھن اور بھجن کریں گے. تھوڑے دن میں ہی پنہ ویاس پوجا اپستھت ہوگی اور وہیں سے آرمبھ ہو جائے گا نوتیرتھ دھام پریکرما کا آیوجن, اب سب لوگ وہیں پر کھینچ جائیں گے جتنے بھکت ہیں مہاپربھو جی کے لیے. اس پرکار سے بھگوان اور ویشنو نے یہ سب سجایا تو ہے, اور اتنے پر بھی یدی ہم لوگوں کا من بھکتی میں آکرشت نہیں ہوتا ہے تو ہمارا یہ پرم درباگیہ ہے. گرو جی کہتے تھے کہ میں نے گھڑی میں تین چابیاں رکھی ہیں, ایک بار چابی دیتا ہوں مہاپربھو جی کے جنم کے سمے میں تو وہ چار مہینہ چلتی ہے قریب قریب, اور اس کے بعد میں پھر رتھ یاترا آ جاتا ہے, رتھ یاترا میں ایک اور چابی دے دی, اور پھر کارتک کے مہینے میں ایک بار اور چابی دے دی. بھکتوں کو آیوجن کر کے ہری کتھا سنا کر کے ان کو بھکتی میں لگانے لائق چیز کرتے ہیں. کتنا کشٹ کر کے یہ لوگ ہم لوگوں کے لیے یہ سب کا آیوجن کرتے ہیں, اس میں دو چار آدمی کا بھی یعنی چت بھگوان کی بھکتی میں لگ جاتا ہے تو بڑے پرسن ہوتے ہیں. دو چار آدمیوں کا ملنا بھی بہت کٹھن ہے, ملتے تو بہت ہیں کنتو آنترک روپ سے انیا بلاسیتا والا لکشن لگانے پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت کم ملتے ہیں. تو سارا پریاس یہ سب ویشنووں کا گرو ورگوں کا ہمارے رشی منیوں کا یہی رہا کہ اس جیون میں آ کر کے ہم لوگ بھگوان کا شدھ روپ میں بھجن کر, اس لیے چیتنیہ مہاپربھو وشیش کر کے آئے, ان کے پریکر لوگ وشیش کر کے آئے, جو کہیں شاستر میں پرسفٹ روپ میں لکھا نہیں تھا ویکت نہیں کیا گیا تھا उसको चैतन्य महाप्रभु के परिसरों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। शास्त्रों में या भागवत में भी राधा जी का नाम लेने में साहस सुखदेव गोस्वामी को नहीं हुआ, बड़े गुप्त रूप से रखा। कलयुग में रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा जी का चरित्र और महिमा किले कितने खुले रूप में दी है, चैतन्य चरितामृत में दिया है। वो विदग्ध माधव, ललित माधव इत्यादि में जो दिया है, कहीं भी शास्त्र में ऐसा परिलक्षित नहीं होता। इसलिए हम लोग जो एकत्रित हैं, ये करोड़ों करोड़ों लोगों में से हैं, किंतु करोड़ों करोड़ों लोगों में से भी अभी दंभ अभिमान अन्याभिलाष कुछ लगा हुआ, कुछ उद्देश्य तो कुछ स्थिर हुआ है, भक्ति हमको चाहिए। किंतु भक्ति चाहिए जाने से भी तो नहीं, उसमें कुछ अन्याभिलाषिता और इधर उधर की चीजें लग जाती हैं, तो उसके मिलने में बहुत देरी हो, बहुत देरी। इसलिए हम लोगों को एकांतिक चित्त रूप में इसी चीज को ग्रहण करने की चेष्टा करनी चाहिए, विचार करके हम देखना चाहिए कि हमारे भक्ति में जो अनुकूल है उसी को ग्रहण करें और प्रतिकूल का सर्वथा त्याग करें। केवल संकल्प लेने से ही नहीं, उसको अपने जीवन में प्रतिष्ठित होना होगा। ये हम अनुकूल जो केवल होगा वही जीवन में हम करेंगे, हम दूसरा कुछ भी नहीं, और ऐसा करेंगे भी। भक्ति में जो अनुकूल है उसे ग्रहण करेंगे, भक्ति में जो प्रतिकूल है, अनुकूल में भी 64 प्रकार की जो भक्ति है ये अनुकूल है, किंतु इस अनुकूल में भी कुछ प्रतिकूल है जो अपने भावों के विरुद्ध है। ऐसे शास्त्रों उल्लिखित नियमों को भी छोड़ करके आगे बढ़ना है, तब फिर भक्ति होगी। इसमें से रूप गोस्वामी का अपना जो विचार है, अपना जो स्वभाव है, अपनी जो सेवा है, वो रूपानु कहलाती है। उसको समझने की चेष्टा हम लोगों को करनी चाहिए, नहीं तो इस संप्रदाय में आने का कुछ भी महत्व नहीं यदि इस चीज को हम लोगों ने नहीं समझा। तो इस जीवन में अंततः हम लोगों का उद्देश्य ठीक हो जाना चाहिए, छोड़ने की इच्छा भी होनी चाहिए प्रतिकूल को। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, इस जीवन में आकर के बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए प्रतिकूल हैं, जैसे कोई रोग हो गया, शोक हो गया, अर्थ की कमी है, और भी तरह तरह की समस्याएं हैं, किंतु उसके लिए हम नहीं आए हैं। उसमें जीवन मत बिगाड़ो, बस ये ठीक करो कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, साधन का उद्देश्य क्या है, और उसी में तत्क्षणात निष्कपट हृदय से लग जाओ और सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। इसलिए हम लोग जो नहीं पढ़ना चाहिए साधारण के बीच में, उसका भी हम लोग बात कर रहे हैं। विशेष करके ये सब समय स्मरण रखना चाहिए, साधारण जनसभा में गोपियों का और उन्हें मुखिया इत्यादि का बाजार हाट घास मास में मत वर्णन करो, न कपूर की भांति उड़ जाएगा, लोग हंसेंगे, लोग समझेंगे नहीं। इसलिए जब तक अधिकारी न हो तब तक ये सब चीजों की चर्चा एकदम बंद रखनी चाहिए। उसमें गीता भागवत के दूसरे मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, ये सब पर अधिक बोलना चाहिए और ये सब चीजों को गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा फिर भक्ति नहीं होती या दूसरे लोगों के प्रति अपराध हो जाता है। जैसे अयोग्य को हरिनाम देना अपराध है, ऐसे अयोग्य को हरि कथा सुनाना भी ये अपराध है। इसे देख सुन करके जैसा हो उसको उस रूप में करना चाहिए। पहले योग्य लोग बने, श्रद्धा हो, ऐसी कथा सुने। अब मैं लोगों का नित्य प्रसंग के में चल रहा हूं। कौन सा श्लोक था, हो गया है ना? अच्छा, वृंदावन में वृंदावन का सनातन गोस्वामी ने क्या किया याद है? वृंदावन का क्या किया सनातन गोस्वामी? क्या बोलो झटपट तो बोले किंतु अपने बोलिए जल्दी कैसे कैसे रक्षण
अपने प्रेम के द्वारा सबका पालन पोषण करते रक्षा करते हैं वृंदा रहने पर वृंदा रहेगा ही समझ में आएगा वो गोपी जितने भी
ये वृंदावन यहाँ पर व्यक्ति उनको मान लिया गया वृंदा ही जो रक्षा करता है जो बन पालन करता है प्रेम प्रदान करता है कृष्ण का गोपियों का उसको कहते हैं वृंदावन मुनि लोग वृंदावन के मुनि लोग कैसे हैं कैसे हैं भाई ये कैसे मुनि हैं
जैसे मुनि को आंखों से बंद करके उनकी तिरोधन करते हैं ऐसे जो पहले जो है ये समस्या पूरी तरह नहीं करो और जो है उनको कोई ने देखे जिससे छोटे छोटे कोमल कोमल पत्ता के पुखी में बैठ करके कृष्ण के महाभूत के दर्शन करने लगे
ये कोमल कोमल पत्तियाँ क्या है वो तो वो मुनि लोग यहाँ के मुनि वालों के लिए ये कोमल कोमल पत्ते क्या है अरे पैसा वो तो उन लोगों के इस मुनि वृंदावन में जो रहते हैं ये मुनि लोग भगवत धर्म पारायण ये कौन पत्तियों में अरे उसके पत्तियां क्या है शांत दास सख्त बात विशेष करके ये हरी हरी बड़ी कोमल मधुर ये पत्तियां हैं उन पत्तियों की आड़ में ये कृष्ण को देखते हैं उनके माध्यम से देखते हैं हाँ अब तक फटर फटर होने लगा बहुत सी वेद की शाखाएं हैं उन वेद की शाखाओं में से जो गोपाल तापनी ब्रह्मजामल राधा उपनिषद आदि ये सब जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में भी श्रीमद्भागवत की शाखा सबसे श्रेष्ठ और मधुर इन्हीं में वो फल लगता है इन्हीं की डाल पर वो सुख पक्षी सब इसमें तीन प्रकार के अधिक जो कीर्तन नित्य श्रवण और स्मरण ये तीन में प्रधान है ये तीन धृत मौना में अंतिम शब्द का जो अंतिम बात जो बतलाया वो प्रेम में मूर्छित हो जाने के कारण ही वो मौन हो जाते हैं वो क्या धृत मौना जतचित्ता तीन उनके लक्ष्य ये मूर्छा के कारण प्रेम की मूर्छा में यह सब चीन हो जाती है
धन्यास्मूढ़मतोपि हरण्येता जानंदनंदनमुपात विचित्रवेश आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधौ विरचितं प्रणयावलोकये
धन्यात्म इसकी तो बहुत बार व्याख्या हो चुकी है बहुत बार फिर भी रिपीटिशन हम लोग इसको करते हैं ओ गोपियां कृष्ण भाव में विभावित होकर के देख रही हैं कृष्ण एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं और वो देख रही हैं कि बहुत सी हिरणियां आ गई और उनके पीछे पीछे कुछ हिरण हैं कृष्ण सार जिन पर कृष्ण काले काले धब्बे हैं उनके पीठ पर चारों तरफ हैं वो हिरणियों के पीछे पीछे आ रहे हैं वो लोग कुछ इधर उधर भी देख रहे हैं श्रेणी की तरफ भी देख रहे हैं, कृष्ण की तरफ में देख, उनकी दृष्टि चारों तरफ में है। और हिरण्या एकाग्र चित्त से, स्थिर चित्त से कृष्ण के मुखारविंद पर ही अपनी दृष्टि लगाई थी। उनके नेत्र अपलक हैं, दृष्टि भी एकदम स्थिर है, कहीं इधर उधर नहीं। वो विचार कर रहे हैं, कृष्ण सार वाला वो विचार करता है, किंतु ये इनका विचार भी नहीं रह गया, एकाग्र चित्त से उसमें लौ दिया। उसे देख करके गोपियां कहेंगे वो धन्य है, ये मूढ़ होने पर भी धन्य है, इनको अपनी मृत्यु का भय नहीं। कृष्ण के साथ में तो वो मारी नहीं जाएंगी, किंतु और जगह जगह होता तो ये मारी जाती, इसलिए ये मूढ़ है। यदि किसी हिरणी को पकड़ना या मारना होता है तो लोग वेणु बजाते हैं, जैसे सांप को, सांप को पकड़ना होगा तो वो वेणु क्या बीना बीन बजाते हैं, और उसके शब्दों से मोहित होकर के वो ऐसे ऐसे करता है, उसके पीछे पीछे वो भी हिलता रहता है और उसे झट पकड़ लेते हैं। ऐसे ही हिरणी को भी पकड़ने के लिए खूब बीना बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, और हिरण आकर के एक तक कोई सहारा लेती हुई, जहाँ थोड़ी सी भार उस पर दिया लठिया पर वो गिर जाती है, उसको पकड़ जल्दी से उठ ली, ऐसी मुँह जाती है। देखो उसको हिरण को बारहसिंघा भी कहते हैं, वो बाघ से एक हाथ अधिक छलांग मारती है। बाघ यदि एक ही साथ कूद जाता है तो ये उसे एक हाथ अधिक कूदती है, इसलिए साजी नहीं पकड़ पाता। उसकी सिंहें अटक जाती हैं यदि कहीं लता गुण में, तभी वो पकड़ लेता है, नहीं तो जंगल में एक भी हिरणी नहीं होती। प्रभु ने ऐसे ही सब चीजों को बनाया, इसलिए ऐसी मूढ़ हिरण्या होने पर भी कृष्ण के इस मोहन वेणु को सुनकर अपने पति के साथ मिलित होकर विचित्र वेशधारी कृष्ण ज्ञानंद नंदनम उपत्त विचित्र वेशम, विचित्र माने बढ़ा पीड़, उस लोग के निकट में उपस्थित होकर के प्रणय दृष्टि से विरचित उपहार उपहारे तहत पूजा कर लेता है। प्रणय दृष्टि से, ये दृष्टि से ही यही उपहार उनका है, और कृष्ण से उसी से अर्चन कर उनकी पूजा करते हैं। सनातन गोस्वामी जी की थी, ये हम लोगों को धिक्कार देने के लिए है ना? एक मूढ़ हिरणी जो वन में रहती है, वो भी कृष्ण की तान सुनकर के, बंसी की तान सुनकर के मुग्ध हो जाती, और हम भागवत रोज सुनते हैं और हमारी चित्त वृत्ति कृष्ण में नहीं, फिर हम जहां के तहां रह जाते हैं, इतना परिश्रम से सुनते हैं, और जहां सीढ़ियों से नीचे गए या इस पाठ से उतर गए, बहुत से लोग हैं जो इसकी चिंता ही नहीं करेंगे, संसार की चिंता है। हम लोगों में भी ऐसा, इसलिए हम लोगों को स्वीकार देने के लिए ये कहे, हम लोग को ठीक ऐसे ही निष्कपट होकर के सारी चीजों को छोड़ करके श्रीमद भागवत और चैतन्य चैतामित, ये वेणु की ध्वनि है कृष्ण की, एक महाप्रभु की और एक है कृष्ण, इसको सुनकर के अपने हृदय को ऐसा ही बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर, पूर्वोक्त जो पशु पक्षियों की बात जो कही थी, प्राय बतांग मोहन मुनयो विहगा, जो पशु पक्षियों की बात कही थी, उनसे भी विशिष्ट ये पशु हैं, जो कृष्ण के गोचारण के समय में पशुओं के साथ में कभी मिल करके, ये हिरण भी कभी कभी चलते हैं। जब कृष्ण वेणु दान करते हैं तो पशु चलती हैं गायें, और गायें बछड़ों के साथ में ये हिरणियां भी पीछे पीछे हो लेती हैं, और हिरणियों के पीछे पीछे हिरण भी उनके पीछे पीछे चल लेते हैं। इसलिए अब इनका वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद में हिरणियों से भी अधिक श्रेष्ठ हैं गाय, उनके बछड़े, उनका वर्णन करेंगे। तो जो गौओं के साथ में कृष्ण के वाणी को सुन करके उसके पीछे पीछे चलती हैं, उनके संबंध में ये बतला रहे हैं। कृष्ण की बहनों की आवाज चल रही है अभी भी संतों के मुख से, गुरु जी के मुख से, वैष्णव के मुख से, किंतु हम वैसा नहीं कर पाते, चेष्टा करनी चाहिए। विशेष करें हमें सोचना चाहिए, आधा जीवन तो हो ही गया, आधा जीवन तो एक तरह से हो ही गया, अब थोड़ा सा जीवन है, उसमें भी एकाग्र नहीं हो सके। और तीन चीजें कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, तीनों को प्रतिष्ठा चित्त को हटा करके भगवान की इन कथाओं के अनुसंधान में लगाना हमारा पहला और परम और एकांत कर्तव्य है। तो कोई सखी करिए धन्यात्म मूढ़ मत, सखीरी हम लोग बड़ी दुर्भाग्य, हम लोग धन्य नहीं, धन्य कौन है, ये हिरणियां है। और बाकी जिनको कृष्ण में प्रेम नहीं है उनका जीवन सार रहित असार है, व्यर्थ है। इस वृंदावन में विशेष करके इस ब्रजमंडल जिनको कृष्ण प्रेम नहीं है, देवता देवियों का भजन करते हैं, वृंदावन में रह करके हम ब्रह्मास्मि का प्रचार करते हैं और उसी में दिन रात लगे हुए हैं। गुरु जी ने एक युक्ति की, आप अभी मैं थोड़ा सा देख रहा था, अनुवाद कर रहा था, उसमें देखा मायावाद में या अद्वैतवाद में साधन सिद्ध साधन का दोष, सिद्ध साधन का दोष ये दार्शनिक शब्द है। क्या इसका तात्पर्य, जो चीज सिद्ध है उसके लिए साधन करने की क्या जरूरत है? हमारे हाथ में सोना है, जितना हम चाहते हैं, फिर सोना के लिए साधन करने की क्या जरूरत। हमने एमए पास कर लिया, ये सिद्ध हो गया ना, तो फिर से कख बबा आरंभ करने की क्या जरूरत है? तो इसको कहते हैं सिद्ध साधन, सिद्ध का साधन। अच्छा, कहते हैं अली गली चारों तरफ बाजार में हाथ में बोलते हैं कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। अरे भाई तू ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म के लिए तुम साधन करने के लिए कहता है कि मैं साधन करूंगा ब्रह्म को, फिर साधन के क्या, तुम तो ब्रह्म ही है, आ रहा है समझ में? अरे तू कहता है कि तू ब्रह्म है, तो फिर इसलिए साधन की जरूरत क्या, तुम तो ब्रह्म है ही है, तुम ब्रह्म नहीं होता तो उसके लिए साधन करता, किंतु तुम ब्रह्म है ही है, फिर उसके लिए साधन करने की जरूरत क्या है? तो तू क्यों कहता है जैसे मैं ब्रह्म हूं, कहता क्यों मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं ये मत कहो, सर्वम खोली दम और बम तू कहता, तो फिर तुझे साधन की जरूरत क्या है? कुछ मैं बात की जीवनी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्ति स्थिर नहीं रहेगी। जो कोई केवल अभी साधन के समय में केवल इस पर जोर देते हैं रस तत्व के ऊपर में और उसको जानते ही नहीं है, तो सिद्धांत पक्का नहीं होता। इसका फल ये होता है कि कोई मायावादी आकर उसके हृदय को परिवर्तन कर देगा चुटकी बजाते ही, मिट्टी टिटी बातें करके। इसलिए इसको भी जानना जरूरी है अपना तत्व इत्यादि, सिद्धांत ज्ञान के ऊपर में प्रतिष्ठित ये रसमयी भक्ति है। गोपियों को निरामूर्ख मत समझो, उद्धव जैसे लोग को चुटकी बजा करके एक सेकंड में उनको कहां से कहां पहुंचा देंगे, उनका उनके दिमाग को भी ठान नहीं पाता है कि गोपियां कितने तत्व में डूबी हुई हैं। उनको तो क्या स्वयं पर ब्रह्म कृष्ण को भी आश्चर्यचकित कर देती हैं ये गोपियां अपने विचारों से। निकान एक हुतोषो गयो शांत को आ रहा थे उधो मन में भयो, उधर ने कहा कि भाई तुम चिंतन करो कृष्ण का ध्यान करो, मैं उधो तुम बड़ा भारी सौभाग्यशाली, तुम्हारे मन 20 प्रकार के, हम दुर्भाग्य बस एक ही मन, और मन जब कृष्ण गए ब्रज में तो लेते गए, अब किसकी आराधना कौन करे तुम ही बतलाओ। उद्धव जी मात सिर खुजलाने लगे। इसे इस सिद्धांत के जानने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वृंदावन में जो हिरणियां हैं, ओह हम लोगों के लिए ये दुर्लभ है उनका जैसा सौभाग्य पाना। स्वच्छंद गति से चलती हैं, हमारे पैरों में बेड़ियां हैं, बेड़ियां दिखाई नहीं पड़ती किंतु बहुत बेड़ियां हैं। इन बेड़ियों को काट करके आना बड़ा सारी कठिन है। एक तो भगवान ने धैर्य क्यों दिया, नहीं जाना चाहिए हमको, ये धैर्य इत्यादि जो है ये बेड़ियां हैं। गुरुओं की शिक्षा, ये उनका डर, लोक लाज, कूल कानी और ये आर्य धर्म, सब बेड़ियां हैं। इनको लांग करके आना, कृष्ण का दर्शन करना बड़ा भारी कठिन है। सबसे लांग लो किंतु पति और अपने कहे जाने वाले जो कुटुंबी हैं, परिजन हैं, समाज के लोग हैं, ये सभी लोग इसका विरोध करते हैं। और इन हिरणियों को उसका पति स्वयं उसके पीछे पीछे चलता है, ये निर्भीक होकर के कृष्ण का दर्शन करो। इसलिए हम लोग का ऐसा सौभाग्य नहीं। ये हिरणियां कृष्ण के वेणी बीज को श्रवण करके हमारे प्रियतम नंदनंदन हमारे जो प्रियतम नंदनंदन हैं उनके पूजा करती हैं, और हम डायरेक्ट रूप में उनकी पूजा कभी नहीं कर सकती। हिरणी कैसे पूजा करती है? हियर इन दिस वेन्यू वे सनातन गोस्वामी इज टेलिंग दैट वी आर नॉट सो मच फॉर्चुनेट एज गोपीज आर। No restriction for deer, no marriage, no shame. Anyone is not telling that you should not go to Krishna. They can go direct there, but we cannot go. There are so many obstacles and binding sound. Our body is also a binding. Everything. हाँ तो वो कैसे पूजा करती हैं? वो पशु जाती है स्वभाव तो विवेक ही है। कैसे मेरी मृत्यु हो जाएगी कि नहीं होगी, क्या होगा हम नहीं समझते, इसे वो विवेक देखें। दिस एनिमल्स आर सो मच अनवाइज, दे कैनट एसोसिएट विद वैष्णवस, दे कैनट हियर हरि कथा, दे कैनट मीट साधु संत एनीथिंग। इसलिए विवेकहीन है, दे आर सो फुलिश। किंतु ओ कृष्ण ने इनको वंचना नहीं की, कृष्ण की सेवा से ये वंचित नहीं हुई कभी। यदि एक आदमी मूर्ख रहे भी, कुछ भी ज्ञान नहीं है और कृष्ण का नाम करता है, भजन करता है, तो वो सर्वोत्तम व्यक्ति। हमने ये अनुभव किया, हमारे गुरु भाई थे, उनको लोग पागल समझते थे, और वो यहाँ पर वृंदावन नवद्वीप से यहाँ आए, बोलना भी नहीं जानते हैं, बंगला भी नहीं बोल सकते, तो हिंदी की तो बात। और बड़े बड़े अफसरों के पास में चले जाते और उनकी चेयर पर बैठ जाते, कहते कृष्ण भजन करो, कृष्ण भजन करो, ऐसे अंग्रेजी से शिकायत, नहीं नहीं मंगल नहीं, नहीं मंगल नहीं, अटपटी भाषा मिल जाए। और वो लोग हाथ जोड़ करके उनके सामने में खड़े हो जाते और पगड़ी लंबी बांधते थे, आंख से कम देखते थे, उम्र भी कुछ हो गई थी, किंतु लोग उनको आदर, हम लोग भी आदर करते, हम लोग उनको चिढ़ाते भी थे कभी 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 गुरु महाराज सो रहे थे चिड़चिड़ा में, तो हम लोग चिढ़ाते थे और वो खुद हल्ला कर उठता, तो गुरु महाराज उठ करके एक दिन रात में करीब करीब 10-11 बजे विश्राम कर रहे थे सब लोग, और हम लोग उसको कुछ कर रहे थे, चिमटी काट रहे थे, और वो वो जोर से चिल्लाए गुरु जी गुरु जी। गुरु जी उठ करके और उसको जाकर के अपना जूता उठा करके जूता से दो एक जूता और हम लोग भाग गए थे। दूसरे दिन जाकर के गुरु जी से नालिश करता है, गुरु महाराज एरा अमा के काल के धरे हमारा के पीटीए छे एरा और अमा के नाना प्रकार संकट छे। गुरु जी और की बोलने तेन मुस्कुरा करके बस बहुत उसको स्नेह करते थे, हम लोग उनको आदर करते थे, तभी हम लोग का स्वभाव ऐसा है। तो हम समझते हैं अब विचार करते हैं कि वो धन्य, उसके जितना विवेक जितना जो कुछ था निष्कपट एक पैसा भिक्षा करके एक पैसा अधेला नहीं रखता था, अधेला नहीं रखता जो कुछ होता था गुरु जी को इतने वो थे। ऐसे गुरु जी हमको यदि हरिनाम दे देंगे तो मैं कल से भिक्षा खूब करूंगा, फिर हरिनाम हो गया हमको यदि भिक्षा देंगे तो अधिक भिक्षा करूंगा। अच्छा तो उन्होंने कहा कि हमको यदि बाबा जी वेश दे देंगे तो मैं जरूर करूंगा। तो बाबा जी भी वेश उसको दे दिया, देखो परमहंस वेश उसको परमहंसी वेश तो इसलिए मूर्खता बड़ी नहीं है भगवान का। एकांतिक रूप में यदि मूर्ख भी पशु पक्षी कीट पतंग नहीं करते हैं तो उस जगत के वंदनीय और पूज्य हो जाते हैं। हम लोग भी उनकी मनी मन में वंदना करते थे, पूजा अभी भी कर रहे हैं। इसलिए भाई वो बुद्धि शुद्धि कोई काम नहीं आ गई, वही आदमी बुद्धिमान है जो कि कीर्तन यज्ञ के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जी की उपासना करते हैं। क्या श्लोक तो क्या कृष्ण ये मूर्ख होने से क्या कृष्ण उसको वंचित कर दे अपने पास नहीं आने देंगे? मूर्खों को जो कुरूप है उनको कृष्ण अपने पास में नहीं आने देंगे, जो दरिद्र है उनको भगवान नहीं आने देंगे? यदि वो हृदय से भगवान को पुकारता है तो कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं। उनके लिए शरीर का कोई मूल्य नहीं, आत्मा का मूल्य। किंतु जो शरीर भगवान का भजन करता है वो भी पवित्र बन जाता है, जगत के लिए वंदनीय हो जाता है। हाँ कृष्ण को ये अधन्य ये हिरण्य प्रणयावलोकन के द्वारा विरचित संभार, संभार माने कहते हैं उपकरण, प्रणय लोकन ये प्रदीप घी का मिला हुआ प्रदीप और सब उपकरण है, ये विरचित उपकरणों के द्वारा इनकी पूजा किया। आंखों के द्वारा विचित्र विचित्र भावों के साथ में उनकी पूजा हो सकती है, वही कर सकते हैं जो इस विषय को जानते हैं, प्रेम रस को जानते हैं वो लोग कर सकते हैं। भाव कुसुम कितने तरह के भाव कुसुम हैं, एक दो नहीं। वो कृष्ण से बातचीत करती हैं कैसे? अपने अवलोकन के द्वारा, दृष्टिभंगी के साथ। बुलाना होगा तो कृष्ण को बुला लेंगे, आंखों से ही बुलाएंगे, आंखों से बातचीत करेंगे, आंखों से हंसेंगे, आंखों से हृदय की भावनाएं व्यक्त करेंगे और उनके भावों को समझ लेंगे। किंतु कौन? जिनके हृदय में प्रेम है, और जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वो नहीं कर सकते। कृष्ण भी दूसरों की तुलना में ऐसे वैसे कृपा अवलोकन करके, कृष्ण भी उसके बदले में उनके तरफ प्रणय से अवलोकन करके उनकी पूजा को ग्रहण करते हैं। यहां पर ही धन्यात्म मूढ़ मतयो अपि अथवा बी शब्द विरचितम विरचितम कहिए उन्हीं के द्वारा यह संभव, यह संभव ऐसा प्रेम विदेश से जो व्यक्ति है उसी के लिए यह संभव है, दूसरों के लिए नहीं। घर में 50 नौकर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, 500 नौकर हैं, कोई 500, कोई 600, कोई 1000 रुपया महीने, कोई 10000 रुपया भी महीना ले रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, और पत्नी कुछ नहीं करती, उसकी बेटी कुछ नहीं करती, बेटा कुछ नहीं करते, उसकी पत्नी भी कुछ नहीं करती, रसोई दूसरे बना रहे, सब काम कर रहे हैं। ये एक बार बातें आएंगे, हंस करके उसे दो चार बातें कर लेती हैं, बस अपना सर्वस्व उसको दे देते हैं, उनको तो महीना देंगे और इसका सर्वस्व उनका है, उनकी संतान का है, किस लिए? बस आंखों से ही बातें हो जाएंगी, अपने प्रेम को दूसरे के प्रति प्रकाशित करेंगे। और यदि कोई किसी से मेल प्रति प्रीति नहीं है तो आंखें बतला देगी कि इसके प्रति हम कुछ नहीं है, आंखें सुनी रहेंगी, सार रही, उसको व्यक्ति समझ लेता है। वी कैन नो दिस पर्सन हैज सम अफेक्शन फॉर मी और नॉट बाई सीइंग द फेस, एस्पेशली व्हाट इज फेस, आई, बट इन फेस ऑल्सो द आईज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए और भी कह रहे हैं, कृष्ण साथ अर्थात प्रिय पति के सहित आगमन करती हैं। कोई भी पुरुष जाति में ऐसा नहीं करेगा, कोई भी, बहुत संकीर्ण है, साधारण लोगों के लिए मना है। यहां तक कि ऐसा भी देखा जाता है कि किसी भी दूसरे पुरुष को पैर छू करके भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा भी लगा पति को भी परमेश्वर जान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। वो लंगड़े लूढ़े सब कुछ हो तो भी, अर्थहीन हो सब प्रकार से हो, किंतु ये कहीं नहीं लिखा गया कि यदि भक्ति से रहते हैं तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए, ये नहीं। स्मार्ट पुस्तकों में ऐसा हो सकता है किंतु भक्ति की पुस्तकों में ऐसा नहीं। बंसीनाथ के श्रवण से हिरण्या आत्महारा होकर, आत्महारा माने अपने आत्मा को भी खोकर के कृष्ण लेकर के बंसी में चले गए, खोकर के बंसीधारी के तरफ में जहां से वेणु ध्वनि आ रही है उधर में दौड़ती हैं, अग्रसर होती है। वनमाला गुंजा इत्यादि निर्मित विचित्र वन्य वेश को देख करके हमारे प्रियतम जो कृष्ण हैं उनको देखती हैं, और हमारे कृष्ण होकर के हम नहीं देख सकती और ये देख सकती। उनके पति भी उस समय रहते हैं, इनको फुर्सत नहीं है कि अपने पति को देखे ये क्या हमारे पीछे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, नहीं। किंतु वो भी कृष्ण सार इसलिए है, कृष्ण को ही सार बना रखा है, उनके जीवन के भी कृष्ण सार है। यद्यपि ऐसा प्रेम उनमें नहीं है जैसा इन हरिणियों में है। यद्यपि ये मूल जाति के हैं, तिरजग, तिरजग माने क्या, यही पशु पशु थावर जंगम कृमि की
मनुष्य प्राणी
मनुष्य इसको सुन करके सचमुच मूड हो रही है। यदि असल मूड हो रही, मूड मैंने क्या, विवेक सब खत्म, क्या हमारा पति करेगा, समाज क्या करेगा, संसार वाले क्या कहेंगे, ये सब भूल जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में बतलाया गया, एते एता
परम
तनुभितौ, वो नहीं नहीं ये नहीं, एक हाँ एवं प्रतस्य प्रिय नाम के क्या जाता अनुरागो दुर्दुप्त उच्च, जाता अनुरागो मैंने क्या, जात अनुराग हो गया है, अनुराग जात उनसे उत्पन्न हुआ है। ऐसे जो लोग हैं वे लोग जाता अनुरागो जित चित्त उच्च, उनका चित्त द्रवित हो जाता है।
दुख लज्जा कुल कलकानी इत्यादि सब कुछ को छोड़ करके वे हमारा कीर्तन और श्रवण और नित्य गीत इत्यादि बस। राधे राधे गोविंद
जय जय श्री राधे।